फास्टिंग है ना, ये तो लिखते हैं आप लोग एकादशी, टुडे फास्टिंग, सारे मंदिरों में लिखा जाता है फास्टिंग, लेकिन सही मायने में फास्टिंग करने के पीछे अभिप्राय क्या है, क्यों करना चाहिए? तो आध्यात्मिक हम जानेंगे, ऐतिहासिक जानेंगे, पौराणिक जानेंगे, वैज्ञानिक जानेंगे, और साथ में हम समझेंगे कि जितना जितना आज का दिन है, एक स्टेटमेंट बोला जाता है अंग्रेजी में, फास्टिंग फॉर द टंग, फीस्टिंग फॉर द माइंड, फास्टिंग फॉर द टंग, फीस्टिंग फॉर द, कि जुबान के लिए तो फास्टिंग है, व्रत है आज, परंतु मन के लिए आज क्या है? फीस्टिंग। फीस्टिंग मतलब प्रीति भोज, है ना। मन का प्रीति भोज क्या है? मन को खूब सारा भगवान का भजन। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पौलन कौरी, प्रभु जी अभी गा रहे थे बहुत सुंदर, माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि जो है, भगवद गीता में भी श्रील प्रभुपाद, भागवतम के चौथे स्कंद में प्रभुपाद अनेकों तात्पर्यों में लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति वाचो वेगम जीव वेगम उदर उपष्ठ वेगम, जीव के वेग को अगर शांत करना चाहता है, महाप्रसाद की प्लेट देखते ही मेरी माला छूट जाती है, मन करता है कि दो माला बाद में कर लूंगा, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए व्रत आदि बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक है। एकादशी का दिन, जन्माष्टमी का दिन बहुत जरूरी है। तो आज के दिन हमें व्रत तो करना है अन्न से, परंतु मन के लिए आध्यात्मिक प्रगति करनी है, अधिक से अधिक कृष्ण चिंतन करना है। उपवास, उप का मतलब क्या होता है? नजदीक, और वास मतलब रहना, तो किसके पास रहना? कृष्ण के पास। उपवास का मतलब ये नहीं कि अभी तो हम फास्टिंग कर दिए उसके बाद मन, क्योंकि हमारा रिफ्लक्स करता है, रिफ्लक्स मतलब विपरीत परिस्थितियों में जाता है जब उसके अनुसार काम नहीं हो। जैसे आपको कांटों की गद्दी पे बिठाया जाए, जैसे व्यास आसन पे बिठाया आपने मुझको, यहाँ पर पहले से मुरारी कृपा प्रभु वो कांटों की गद्दी बना दे, बोले आइए प्रभु जी बैठे, उछल जाऊंगा मैं। उसका कारण है कि स्वाभाविक कांटे चुभते ही मैं भागूंगा, ऐसे ही मन को व्रत कांटे के समान लगता है। मन कहता है इस सब में क्या रखा है, है? श्रील प्रभुपाद ने कहा प्रचार ही सार है, प्रसाद खाओ प्रचार करो। प्रचार तो हम क्या करते हैं, हम ही जानते हैं, एक आदमी को थोड़ा समझा देंगे भगवद गीता के बारे में, बुक दे देंगे, एक लेक्चर दे देंगे, हम कौन सा बड़ा ही रिवोल्यूशनरी प्रचार करने वाले हैं। लेकिन फास्टिंग ना करने के लिए हमारा मन हमको बहुत प्रकार के ऑप्शन देता है, अरे खाओ भर पेट भैया, पेट भर के जाएंगे भगवत धाम, है ना। प्रसाद खाने के लिए कभी मना नहीं किया, खाना खाने को मना किया। लेकिन अगर आप शास्त्र देखेंगे, पद्म पुराण में लिखा है महाविष्णु प्रसाद भी मिले तो उसको सिर से लगाओ, द्वादशी के लिए रख दो, एकादशी में नहीं खाया जाता। जगन्नाथ प्रसाद के लिए कहा जाता देखते ही पा लेना चाहिए, सार्वम भट्टाचार्य ने महाप्रभु के हाथ से बिना ब्रश किए खा लिया था, महाप्रभु ने एक दिन पहले उसको अपना कृष्ण रूप दिखाया, वो मान गए, और दूसरे दिन सार्वम भट्टाचार्य को चेक करने के लिए जब महाप्रभु आए, महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की मंगला आरती का भोग लेके आए थे, क्योंकि ये रात को जागा था तो हेड पुजारी सुबह 6 बजे सो रहा था, सार्वम भट्टाचार्य हेड पुजारी थे जगन्नाथपुरी के, सो रहे थे, सुबह सुबह महाप्रभु जगन्नाथ का महाप्रसाद लेके गए, बोले लो पालो। तो उसने अपनी भगवत प्रेम दिखाने के लिए, अपने भक्त जो प्रेम दिखाने के लिए, तुरंत जितना जगन्नाथ प्रसाद था बिना मंजन ब्रश किए कुल्ला किए खा लिया। महाप्रभु ने उसे आलिंगन किया, बोले वाह तुम भक्त बन गए। परंतु वही जगन्नाथपुरी का प्रसाद अगर एकादशी के दिन मिले तो नहीं पाना चाहिए, उसको रख देना चाहिए सिर पे लगाकर दूसरे, क्योंकि अन्न खाना आज के दिन पाप हो जाता है एकादशी। तो फीस्टिंग फॉर द टंग कि फास्टिंग फॉर द टंग, फास्टिंग फॉर द टंग एंड फीस्टिंग फॉर द माइंड, फीस्टिंग फॉर द, तो मन के लिए फीस्टिंग होना चाहिए अधिक से अधिक। आज का दिन है, हम अपने आप को व्रत के प्रेशर में ना दबा करके, होता है ना व्रत का प्रेशर रहता है, प्रभु जी आज प्रचार पे नहीं जाएंगे, आज कुछ सेवा में नहीं जाएंगे, आज एकादशी 25 माला भी है, रेस्ट तो बनता है हमारा थोड़ा सा। आज का दिन है अपने को दबाने का नहीं, अपने को उजागर करने का। अधिक से अधिक कृष्ण कथा सुने, बोले, पढ़े, जपे, कीर्तन करें, जैसे भी करके, जितना अधिक क्या करना। ऐसे बैठेंगे तो आपको जरूर नींद आएगी। कैसे बैठना चाहिए? मेरुदंड सीधा करके। दुखी है क्या क्लास में बैठने से? तो बाहर खड़े हो सकते हैं। आरामदायक नहीं बैठना, एकदम कमर सीधी करके। बोलते उत्कंठित होकर के भगवान की कथा सुननी चाहिए। मैं मानता हूं मैं पतित हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कृष्ण कथा पतित है। कृष्ण कथा उत्तम, सोना नहीं है, नींद आती है तो बाहर खड़े होना है, ठीक है। तो इस तरह से आज के दिन जितना हो सके सोने को क्या करना है? जम, सोना नहीं है। प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज एकादशी? प्रभुपाद ने कहा नो स्लीपिंग नो ईटिंग। भागवत कथा में सोना तो बहुत ही बड़ा अपराध है। नो स्लीपिंग नो ईटिंग। हमें नींद कब आती है? जब अपने कान बंद करके कथा में बैठते हैं। जब खोल के बैठेंगे अंदर जाएगी कृष्ण कथा से नींद आती है। सोता हुआ व्यक्ति कहते हैं सुप्त अवस्था से जाग जाता है, लेकिन अगर आपको नींद आ रही कथा में, इसका मतलब ये कान के अंदर जा नहीं रहा। ये पहले से ही स्पीकर को देख करके या कथा के टॉपिक को देख करके हम कान बंद करके बैठते कह रहे चलो बैठना जरूरी है। ये खुला होगा ना कभी नींद नहीं आएगी, नेवर। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैं भागवत कथा में जाता हूं मुझे नींद नहीं आती। तब आती बहुत ही ज्यादा, जन्माष्टमी के दिन रात को 2 बजे तक जागे हो, सुबह मंगला आरती जागे हो, तब कभी कभी नींद आती है। परंतु आपको नींद नहीं आएगी अगर आप भगवान की कथा के प्रति आपका रुझान होगा, है ना। अगर हम व्यक्ति देख करके या सब्जेक्ट देख करके सोचेंगे तो नींद आती। तो एकादशी के दिन प्रयास कोशिश करना चाहिए दिन में, रात में भी ना सोएं। अभी कुछ दिन पहले निर्जला एकादशी पे हम लोगों ने रात्रि कीर्तन किया पूरी रात। अभी भक्त प्यासे थे, ओ तो भक्तों ने अनुभव किया, ऐसा मैंने भी अनुभव किया कि जब हमने रात्रि कीर्तन किया और कीर्तन में अपने आप को पूरा डुबो दिया, जोर जोर से हम अपने कीर्तन में मग्न हो गए, खूब जोर से कीर्तन, मृदंगा, करताल, जो जो बजा सकता था वो बजा रहा था, जोर से गा रहे थे पूरी रात बिना पानी पिए। सुबह 10 बजे तक इस बार फास्टिंग थी निर्जला एकादशी वाले दिन, किसी को भी प्यास नहीं लगी, सब बोले बड़ी सरलता से प्रभु जी निकल गया। लेकिन वही जो लोग कीर्तन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, पीछे बैठे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, आ तो गए थे कहने पर रात्रि कीर्तन पर, तो वो लोग क्या कर रहे थे? पास जाके मैंने सुना तो नींद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद बेचैनी में वही मंदिर की व्यास आसन की गद्दी उठा करके रात में बोले कौन देख रहा है, किनारे जाके अंधेरा होता है कीर्तन भगवान क्या कर, पीछे जाके प्रभुपाद जी के पास जाके सो रहे थे, पंखा लगा के प्रभुपाद जी का अपने ओर। उठो क्या कर रहे हो, ये सोने के लिए आए हो आप यहाँ पर? सोना है घर जाके सो, भगवान को दिखा रहे हो मैं कीर्तन में आया हूं, पर सो रहे हो आप। ऐसे हम जप करते हैं सो रहे हैं, इससे कोई अभिप्राय नहीं। तो सही मायने में अगर हम एकादशी के महिमा को समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कोई आपको बोलेगा सो जा, लोरी गाएगा बेटा सो जा, तो नहीं सोऊंगा आज, नहीं सोऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है नो स्लीपिंग नो ईटिंग, ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारे भक्त प्रश्न पूछते हैं एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, तो आज हम उस सब्जेक्ट पे भी थोड़ा पढ़ते हैं। एकादशी के बारे में पद्म पुराण में वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा जब महाभारत युद्ध चल रहा था, वो कहते हैं कि प्रभु बताइए कि इस संसार में सबसे उत्तम व्रत क्या है, सबसे उत्तम व्रत। तो भगवान ने कहा शिवरात्रि का व्रत रखो तो पुण्य मिलता है। मिलता है कि नहीं? कितने लोग मानते हैं शिवरात्रि के व्रत से पुण्य मिलता है? मिलता है, लेकिन पाप मिलता है अगर ना रखो तो? कोई पाप नहीं लगता। अच्छा नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं प्रभु जी? लेकिन ना रखो तो? हम लोग नहीं रखते, पाप मिलता है क्या? कोई पाप नहीं। मंगलवार का व्रत रखो तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन पाप मिलता है नहीं रखो तो? वैभव लक्ष्मी का व्रत रखो तो माताओं को पुण्य मिलता है, लेकिन ना रखो तो पाप।
सोमवार का शिव जी का व्रत रखो तो पुण्य मिलता है, ना रखो तो पाप नहीं मिलता। लेकिन एकादशी का व्रत रखो तो पुण्य मिलता है, लेकिन ना रखो तो पाप लगता है। एकमात्र ऐसा इकलौता व्रत भगवान ने बनाया जिसके न रखने पर पाप लगता है। सोचिए जरा, ये नेगेटिव मार्किंग होती है ना आईआईएम अहमदाबाद में, जब आप कैट का एग्जाम दोगे तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव मार्किंग होती है, एक नेगेटिव मार्किंग। कई जगह होता है 10 में से आपने 8 सही किए, 2 गलत किए तो 8 नंबर। लेकिन कई जगह एग्जामिनेशन में होता है 10 में से 8 सही किए और 2 गलत किए, तो 2 गलत के 2 तो गलत हो ही गए और नेगेटिव मार्किंग के आधा आधा नंबर आउट कट गया, तो 10 में से 7 नंबर। बोले 8 सही फिर 7 क्यों? बोले 2 गलत हुए, उसके आधे आधे नंबर कट गए, नेगेटिव मार्किंग। एकादशी व्रत न रखने से नेगेटिव मार्किंग होती है। और अगर कोई व्यक्ति ये पुराण का अगर कोई 24 एकादशी का व्रत कर लेता है, इस बार 26 आ गई इस साल अधिक मास के कारण, पुरुषोत्तम मास के कारण 26 व्रत रख लेता है, उसको पूरे साल में 365 दिन में जितने भौतिक, जितने समर्थ ब्राह्मणों के, जितने वैष्णव ब्राह्मणों के जितने व्रत हैं, वो अगर कभी गलती से छूट भी जाए उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसने निष्ठापूर्वक 26 एकादशी का व्रत किया, उसको सभी का फल मिल जाता है। मंगलवार व्रत, सोमवार व्रत, बुधवार व्रत, बृहस्पतिवार व्रत, शुक्रवार व्रत, शनिवार व्रत। अलग से शनि महाराज का व्रत रखने की, भगवान शिव का व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र एकादशी व्रत बहुत शक्ति है इस एकादशी व्रत, और साथ में खाली पुण्य नहीं देता है। भौतिक संसार का व्यक्ति जो अन्न नहीं खाएगा और टीवी देखेगा उसको हो सकता है इसका पुण्य मिल जाए, परंतु भक्त के लिए ओहो, माधव तिथि भक्ति जननी, जननी समझते हैं, पैदा करने वाली, माधव तिथि के दिन ही भक्ति की प्रगति हो सकती है। कोई व्यक्ति अभक्त है, पहले दिन आया है मंदिर में और गलती से एकादशी पड़ गई, व्रत रखा, आप देखेंगे अगर उसने निष्ठावान होकर व्रत कर लिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ऐसी ग्रोथ होगी उसकी, कहेगा प्रभु जी बड़ा आनंद आ रहा है भक्ति में। माधव तिथि भक्ति जननी, यत्न पालन करी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आंखें आए तो पलकों को धागे से बांध के ऊपर कर दो नींद में, लेकिन सो मत, पेड़ से बांध दो पलकों को ऊपर, खोल करके बैठो, यतन से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना सरल नहीं है। भौतिक संसार का जीवन ऐसा है, कांटों की गद्दी पे बैठो तो जंप करेंगे ही करेंगे, मन हमारा भागेगा, परंतु मन को नियंत्रित करने के लिए मन को कृष्ण में डुबाना है, पूरा पूरा डुबा देना है। आज के दिन जितना अधिक डुबाएंगे आपको भूख प्यास भूल जाएंगे, कहेंगे अरे प्रभु जी पता ही नहीं चला, सुबह से एक बार खाया था फिर तो मैं इतना घुस गया था, कथा कीर्तन में याद ही नहीं रहा। किसी का अनुभव है ऐसा? अनुभव है ऐसा प्रभु जी? एकादशी के दिन अधिक कथा करने से नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती, लेकिन एकादशी के दिन ये सोचते रहने से आज मेरा अन्न से नाता नहीं है, फिर चिंतन चलेगा अन्न अन्न अन्न, कल द्वादशी कब आएगी, कब मैं पारण करूंगा, और उसके बाद में फिर दोबारा से अपनी सेवाओं में जाऊंगा, आज तो प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सबसे मुख्य व्रत है, क्योंकि एक बार एक राक्षस था जिसका नाम था मुर राक्षस, और मुर नामक राक्षस जो था उसको सभी देवता उससे हार रहे थे, उसने यहां तक कि स्वर्ग के सारे देवताओं को लात मार के स्वर्ग से निकाल दिया, इंद्र को भी निकाल दिया, सूर्य को भी निकाल दिया, चंद्र को भी निकाल दिया, वरुण को भी निकाल दिया, अपने सारे राक्षस सेना को उसने कैप्टन बना दिया, स्वर्ग के इंद्र तुम बन जाओ, वरुण तुम बन जाओ, सूर्य तुम बन जाओ, रात के समय उजाला करो, दिन के समय सबको सुलाओ, अपनी मर्जी से सूर्यदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव सब उसने बदल लिए थे। ऐसा खतरनाक मुर राक्षस, शरीर उसका देखने में बहुत ही भयानक था। सारे देवता जब दुखी हो जाते हैं तो फिर कहां जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के सभी देवताओं ने प्रार्थना करी, बोले क्या करें? ब्रह्मा जी बोले भगवान के पास चलो। इसका मतलब ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। भगवान के पास गए सभी देवी देवता, यहां तक कि शिव जी भी उसमें थे, शिव, ब्रह्मा और अनेक देवी देवता, क्योंकि सब स्वर्ग से तो निकाल दिए गए थे, सब इकट्ठे होकर के गए और भगवान की प्रार्थना करी, और क्या बोले? ओम नमो देव देवेश देव दानव वंदिता दैत्यारे पुंडरी काक्ष त्राहिनो मधुसूदना सुरा सर्वा समायत भयाभीतश्च दानवत शरणं त्वं जगन्नाथ त्राहिनो भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल जगन्नाथ, एक व्यक्ति है भयानक राक्षस मुर हमारे पीछे पड़ गया, हमें लात मार के हमारे स्वर्ग से निकाल दिया, अपना ही स्वर्ग बना लिया है, अपने ही सूर्य अपने ही चंद्र बना लिए हैं, कुछ करिए प्रभु। भगवान तो अपने भक्त वत्सल अगर बोल दिया तो भगवान अपने भक्त के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मुक्ति मांगोगे दूंगा, मुक्ति मांगोगे दूंगा, पर भक्ति मांगोगे तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? भक्ति भक्त देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन भगवान भक्ति क्यों नहीं देते हैं? हाँ, भगवान भक्त वत्सल है ना। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, पराधीन मतलब नौकर बनना पड़ता है। अर्जुन कहता है चलो इधर चलो मेरा रथ लेकर के, भगवान बोलते हैं सेनियर अपो मध्य हो, सेनिया के मध्य में ले चलो। भगवान ड्राइवर बनकर मध्य में ले जा रहे हैं। कृष्ण वॉल्टर से उतर के आए, बोले आओ प्रभु तुम्हारे लिए मैं करतार बजाता हूं, तुम कीर्तन करो, ऐसी स्थिति हो जाएगी है ना। और ऐसे अनेकों संत हैं, इसीलिए संत जन जो है जितने भी भक्त हैं भागवत भक्त हैं वो भगवान से मुक्ति नहीं मांगते हैं, भुक्ति नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, क्या? भक्ति मांगते हैं भगवान से। और आज का दिन एकादशी का भक्ति देने वाला दिन है। भगवान कहते हैं आज के दिन डिस्काउंट है, जो भी अन्न नहीं ग्रहण करेगा, जो भी भगवान का नाम जप करेगा, शास्त्र सुनेगा, शास्त्र पढ़ेगा, उसको ऑटोमेटिकली डिस्काउंटेड रेट में आज भक्ति मिलेगी। ले जाओ माधव तिथि, भक्ति जननी, भक्ति का जन्म हो रहा है। सोचिए आज भक्ति मिल रही है, बाकी दिन भुक्ति और मुक्ति मिल सकती है। इसलिए एकादशी को यत्न रूप से पालन करना चाहिए। सभी भक्त भगवान के पास गए, भगवान प्रसन्न हो गए, भक्तों की प्रार्थना सुन के कहते हैं ठीक है। कहाँ रहता है वो? इंद्र ने वर्णन किया, इंद्र कहता है ताला जंग नाम का उसका पिता है जो कि ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा जी ने एक राक्षस भी पैदा किया ताला जंग, ताला जंग नाम का एक व्यक्ति है जो कि ब्रह्मा का पुत्र है और ताला जंग चंद्रावती नगरी में रहता है। जैसे इंद्र की जो नगरी है उसको क्या बोलते हैं? अमरावती। ऐसे उसने एक अलग बनाई है चंद्रावती, चंद्रावती नगरी में रहता है और चंद्रावती नगरी में रहकर के उसने सारे देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा अपना सारंग धनुष लेके। भगवान के धनुष का नाम क्या है? सारंग। और गदा का? कुमोद की। कुमोद की गदा और सारंग धनुष लेकर भगवान लड़ने के लिए गए, चतुर्भुज रूप धारण करके लड़े। इतना लड़े लेकिन बड़ा भयानक था, शक्तिशाली था, वो मर नहीं रहा था। भगवान की लीला थी, भगवान चाहते तो मार सकते थे परंतु भगवान ने मारा नहीं। और भगवान जाकर के सिंहवती नाम की एक गुफा थी, सिंहवती, उस गुफा के अंदर जो कि 12 योजन लंबी थी, उस सिंहवती गुफा में जाकर के भगवान विश्राम करने लगे, सो गए। ये पीछे से गया और जाकर के कहता है वाह भाई वाह, भाग दौड़ करी आकर के मजे से सो रहे हो। मतलब सोचो बॉक्सिंग का मैच हो रहा हो, इधर वाला लगा पड़ा और सामने वाला चादर उड़ के बोला 5 मिनट रेस्ट, तो कितना गुस्सा आएगा सामने वाले को। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा बर्ताव करे, बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई आपके साथ बुरा करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? कोई आपको बुरा भला बोले, अरे सो रहे हो तुम, ऐसे कोई बोल दे तो क्या करोगे आप? वापिस बोलोगे कैसे बोलते हो आप? ऐसे बोलोगे? क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो कहते हैं अगर आप कुछ नहीं बोलोगे और सामने वाला आपको बोलता रहे प्रभु आपकी सेवा खराब, प्रभु आप ऐसे, प्रभु आप ऐसे, आपको दिए नहीं है, आपको बुद्धि नहीं, आप कैसे करते हो, आप कभी भक्त नहीं बन पाओगे, वो बोल रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो क्या होगा? वो व्यक्ति बोलेगा अरे बोलता क्यों नहीं है, और इरिटेट हो जाए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आप सच में भक्त बनना चाहते हो तो एक चीज धारण कर लो, क्या? जवाब नहीं दूंगा, विषम परिस्थितियों में मौन धारण करूंगा। चाणक पंडित कहते हैं मौनम सर्व विजयते, मौन व्यक्ति हमेशा जीत जाता है। तो मौन का मतलब है जब बोलूंगा कृष्ण के बारे में बोलूंगा, बाकी समय जरूर। अगर वो व्यक्ति थूक भी देता है हमारे मुंह पे तब भी हमें बोलना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, थैंक यू। स्नान करने के लिए दोबारा मौका दिया आपने, आज एकादशी का दिन मैं पुनः स्नान कर सकता हूं। ऐसी भावना को व्यक्ति रखेगा तो उसको कभी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि एकादशी के दिन अगर किसी व्यक्ति ने क्रोध कर लिया मान लो, तो जितना भी व्रत किया है ना वो सब समाप्त हो जाता है, सब क्षीण हो जाएगा, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति मरा नहीं कहेगी अरे आज के दिन जप कर रहा है फिर क्रोध भी कर रहा है, तेरे हृदय में थोड़ी आऊंगी। माधव तिथि भक्ति जननी तो है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन है, देख करके आएगी भक्त जाने योग्य है कि नहीं है। तो आप सोचिए, भगवान ने बद्री का आश्रम में, ये गुफा थी सिंहवती, जो बद्रीनाथ है अभी पहाड़ों में, उस बद्रीनाथ में सिंहवती नाम की गुफा में भगवान घुसे, जाकर के सो गए। पीछे से मुर नामक राक्षस घुसा और क्या कहता है, सो रहे हो, उठता क्यों नहीं, लड़ता क्यों नहीं। जिससे भगवान को मारने के लिए दौड़ा, भगवान के शरीर से देवी प्रकट हुई, आप सब जानते हैं एकादशी देवी। एकादशी देवी ने देखते ही मात्र से भगवान के सभी आयुध लेकर प्रकट हुई थी, तुरंत ही क्या कर दिया, उस मुर नामक राक्षस का वध कर। जैसे राक्षस का वध हुआ, हाहाकार हुआ, सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लग गए, भगवान सोते से जाग गए। जब जागे भगवान तो भगवान ने पूछा कि क्या हुआ, बोले कि प्रभु राक्षस आया था, युद्ध हुआ और उसमें वो मारा गया। कहा तुम कौन, बोले आप ही के शरीर से आप ही की शक्ति हूं, जैसे राधा रानी भगवान की हलादनी शक्ति है, ऐसे ही भगवान की आनंद शक्ति एकादशी देवी, भगवान को आनंद देने वाली। एकादशी व्रत रखने से भगवान को आनंद होता है, आनंद शक्ति भगवान की प्रकट हुई एकादशी के नाम से। वो देवी प्रकट होकर कहती है, भगवान मैं तो आप ही की शक्ति हूं। भगवान ने कहा कोई वर मांगो, उन्होंने कहा एक वर दे दो प्रभु कि आज के दिन जो भी व्यक्ति भगवत नाम का जप करे, अन्न से व्रत करे, ज्यादा भागवत कथा का श्रवण करे, भागवत कथा को बोले, कम सोए, अपनी इंद्रिय भोग से दूर रहे, वो व्यक्ति आपका प्रिय बन जाए, क्योंकि आपकी भक्ति पाना इस संसार में दुष्कर है। भगवान ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। तो सोचिए आप, तो जो भगवान ने शयन किया सिंहवती में जाकर के, शयन एकादशी बन गए, सो गए भगवान, और उठे तो जितनी देर भगवान सोए उतनी देर किसका राज था, राक्षस मुर का राज था, सभी देवी देवता भगवान के अंदर, भगवान तो सो रहे, तो सोते ही हो जाता है शयन। और जब भगवान उठे तो क्या हो जाता है, देव उठान, देवों ने एक प्रार्थना करी, भगवान को उठाया, भगवान उठ गए, देव उठान एकादशी। इस समय हमारे लिए तो 4 महीनों का है, परंतु भगवान के लिए तत्क्षण एक क्षण का है कि? तो भगवान सोए, अभी सो गए जाकर के, आज से भगवान सो जाएंगे, और 4 महीने बाद सावन भादो अश्विन कार्तिक, उसके बाद जाके भगवान कार्तिक एकादशी देवथान एकादशी जो आएगी अंतिम नवंबर के महीने में, तब जाके भगवान उठेंगे और मुर का वध करेंगे। मुर का वध करने के कारण भगवान का नाम क्या पड़ जाएगा, मुर आरी, आरी मतलब दुश्मन, मुर आरी। तो भगवान बहुत ही कृपालु हैं, उन्होंने बड़ी कृपा करी है, जो कि नारायण का रूप लेकर के इनका वध किया। और भगवान कहते हैं पद्म पुराण के 14वें अध्याय के अंदर वर्णन किया गया है, उस चैप्टर का नाम है क्रिया सर्ग सार, क्रिया सर्ग सार। उसमें व्यासदेव के एक भक्त थे जिनका नाम था जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि ने भगवान व्यासदेव से पूछा, आपने इतने शास्त्रों की रचना करी है और आपने शास्त्रों में वर्णन किया है कई जगह कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। ये तो मानते हैं कि एकादशी देवी ने माना, लेकिन और तो कोई कारण होगा क्या, एक ही कारण है। तो जैमिनी ऋषि वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी जैमिनी ऋषि को बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आज के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए। वो कहते हैं भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी, तो सृष्टि की रचना में भगवान ने विभिन्न ब्रह्मांडों की रचना करी, और ब्रह्मांडों की रचना करने के साथ भगवान ने स्वर्ग नर्क की रचना करी। नर्क की रचना जब भगवान ने करी तो नर्क के लीडर बनाए गए यमराज, और नर्क के अंदर एक देवता बनाए गए जिनका नाम था पाप पुरुष। पाप पुरुष, अब पाप पुरुष जो थे उनकी सेवा क्या थी, जो व्यक्ति पाप करे उसको नरक में मत ले जाओ, प्रताड़ित मत कर, उसको बाहर निकाल दो। ये उसकी सेवा थी पाप मोक्ष। बना किससे था? तो पूरा वर्णन किया गया उसके हर एक अंग हम जो पाप करते हैं उससे बने थे। आप देखिए हम कौन कौन से पाप करते हैं, ऐसा वर्णन शास्त्रों में आता है। उसका सिर बना था ब्राह्मण की हत्या करने वाले पापी से। ब्राह्मण की अगर हत्या कर दो तो जो पाप लगता है उससे उस पाप पुरुष का सिर बना था। जो उसका मुख बना था वो प्रसाद चोरी करने के कारण, खाना चोरी करने के कारण जो मुख होता है ना भूखा, ये उसका मुंह से था, अन्न की चोरी करने के कारण उसका बना था। और जो उसकी नाक थी वो पत्नी का वध करने वालों के जो पाप होते हैं उससे उसकी नाक बनी थी। उसकी गर्दन धन चुराने वालों से बनी थी, धन चुराते हैं ना जो दूसरों का पैसा, धन चुराने वालों से उसकी गर्दन बनी थी। उसकी कमर पता किससे बनी थी? अपना गुणगान करने वाले पापी से। वो तो हम लोग सभी करते हैं ना, है कि कोई आपको बोले प्रभु आप कोई सेवा नहीं करते तो तुरंत पता चला अरे प्रभु जी मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, अपना गुणगान गाने वाले से उसकी कमर बनी थी। और साथ में उसकी जंगा बनी थी अपने गुरु के द्रोही के कारण। प्रभुपाद जी ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी अगर हम उसे नहीं मानते तो हम पाप पुरुष की जंगा के द्वारा तोड़े जाएंगे यहाँ पे रख के, जैसे हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने मारा। गुरुद्रोही को पाप जो है उस पाप से उसकी जंगा बनी थी, और ऐसे विभिन्न पापों से उसका पूरा शरीर बना था। रंग उसका पूरा काला था, नाम उसका क्या था? पाप पुरुष। ऐसा पाप पुरुष जो था उसने प्रार्थना करी भगवान से, बोला प्रभु आप ही ने सृष्टि बनाई, आप ही ने पुण्य और पाप बनाए, पाप से मैं पाप पुरुष बना, आपने मुझे सेवा दी, जो पाप करे उसको दंडित करो। प्रभु मेरी क्या गलती है कि आपने एकादशी भी बना दी? एकादशी के दिन आपने बड़ी सरल विधि बना दी, जो भी व्यक्ति नारायण के मंदिर जाकर के प्रणाम कर दे वो अपने पाप से रहित हो जाता है। तो प्रभु मेरा तो डिपार्टमेंट खाली हो रहा है, यहां से सभी लोग जो हैं वो जिन्हें मैं दंडित करने के लिए कढ़ाइयों में लाके तलता हूं, फ्राई चिप्स फ्राई करता हूं, वो सारे के सारे आपके नाम सुनते ही, नारायण स्मरण करते ही, मंदिर की तरफ जाते ही मुक्त हो जाते हैं। प्रभु कुछ ऐसा भी नियम बनाइए जिससे बहुत ही जो श्रद्धावान हो वो बच जाए, बाकी वरना मेरा डिपार्टमेंट खाली है, मुझे समाप्त कर दो, मेरी सेवा की जरूरत क्या। एक भक्त को अपनी सेवा से बड़ा प्रेम होता है, सेवा ना रहे तो भक्त बड़ा विचलित रहता है, प्रभु जी कोई सेवा तो दीजिए, है कि? तो भाव पुरुष ने कहा कोई सेवा तो दीजिए। कहा ठीक है, तुम क्या चाहते हो? कहा कोई नया नियम बनाइए। हमने कहा ठीक है, एक नियम है कि एकादशी के दिन तुम जितना भी इस पृथ्वी पे अन्न है ग्रेन, उसमें जाकर के छुप जाओ सूक्ष्म रूप से। जो जो लोग मंदिर आएंगे, कीर्तन भी करेंगे, नाम जप भी करेंगे, मंदिर में अगरबत्ती आरती भी करेंगे, परंतु बोलेंगे नहीं नहीं एकादशी का दिन बस चावल नहीं खाना चाहिए, गेहूं खा सकते हैं, वो लोगों को ले आओ, वो वाले फिल्टर करके ले आओ दंडित करने के लिए। लेकिन जो सच में सब कुछ त्याग देते हैं और यहां तक भी अपना प्रिय महाविष्णु प्रसाद भी त्याग देते हैं, वो उन व्यक्तियों को नहीं, उनको नहीं, वो तो भक्त है ना, उनको नहीं छोड़ना ठीक। इसीलिए गलती से भी आज के दिन कई, एक दिन एक व्यक्ति मिले थे बड़े भक्त मरे को, कह रहे थे प्रभु जी निर्जला एकादशी रही बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2 घंटे पहले मुझसे रहा नहीं गया, बहुत लंबा समय था, फिर क्या किया आपने? कहा नींबू पानी पी लिया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भगवान वाले। बोले नहीं इतनी नमक की कमी हो रही थी, मैंने खूब काला नमक डाला। तो मैंने कहा आपने पारण समय से पहले काला नमक डाल लिया तो एकादशी तो टूट गई आपकी। तो खूब काला नमक डाल के बोले 2-3 गिलास नींबू पानी पिया प्रभु आनंद हो गया। काला नमक डाल लिया तो फिर हो गया ना एकादशी तो खत्म। एक अन्न का कण भी चला गया तो पाप पुरुष का भक्षण का व्यक्ति बन जाता है। लेकिन अगर गलती से हो जाए, ऐसे उनसे गलती से हो गया, तो उस व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिस वक्त गलती हो तब से लेकर के व्रत चालू कर देना चाहिए। जैसे मान लो सुबह सुबह उठे और याद नहीं रहा एकादशी है और मैंने गलती से कुछ अन्न खा लिया, मंदिर आया पता चला टुडे इज एकादशी, बोले अरे कैलेंडर में तो कल दिखा रहे थे, गलती हो गई प्रभु जी अब क्या। बोले तो अभी से व्रत चालू कर दो और द्वादशी के दिन भी भूखे रहो, 2 दिन का व्रत, जब पता चला तब से जब तक द्वादशी समाप्त नहीं होती और त्रयोदशी में पारण करो, थर्ड डे तीसरे दिन, तब व्यक्ति को एकादशी के जो अपराध हुआ है उससे पश्चाताप करने का मौका मिले। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं अधिक माला का जप करो, दूसरे दिन 16 की जगह 32 माला जप करो। भाई टूट गया था, पूरा दिन एकादशी रखी लेकिन अब दोबारा रखने योग्य में स्थिति नहीं है तो ठीक है। बहुत ही जैसे भीम को भूख लगती थी, खाया के बिना मुझसे रहा नहीं जाता, सेवा नहीं होती, तो सेवा सबसे सर्वोपरि है। फिर उस समय अधिक माला का जप करके पश्चाताप कर सकते हैं, क्योंकि पश्चाताप करने की भक्ति मार्ग में एक ही विधि है। भक्ति में अगर कोई अपराध हो जाए तो भक्ति के द्वारा ही उसका पश्चाताप किया जा सकता है कि किसी भक्त का अपराध हो गया तो कैसे ठीक होगा? उसके लिए थोड़ी मैं सभी तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके गंगा स्नान करके आऊंगा तो मेरा ऐसे ठीक नहीं होगा। अधिक माला का जप करके ठीक होगा, भक्त की सेवा करके ठीक होगा, भक्त को प्रणाम करके ठीक होगा, भक्त से विनती करके ठीक हो जाए। तो अगर हम कुछ भी ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए एकादशी बहुत सुंदर दिवस है। आज प्रयास करें, यत्न से पालन करें, क्योंकि आज अन्न में कौन रहते हैं? पाप पुरुष। इसलिए आज के दिन व्रत न रखने से भी पाप लग जाता है। तो कई लोग बोलते हैं ना जी बच्चा है छोटा अभी कहाँ समझेगा, जी देख लो आप कितना पाप खिलाना चाहते हो, है कि नहीं? बोले नहीं भगवान को भोग लगा के खिलाया था, भगवान का भोग आज तो भगवान ने खुद ही कहा है आज मैं अन्न में पाप के रूप में रहता हूं तो भोग लगेगा कैसे। तो आज के दिन हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ लेकिन भगवान को एकादशी फास्टिंग नहीं कराना चाहिए, भगवान को भोग लगा सकते हैं और जो भोग बचेगा भगवान का प्रसाद उसको हम अगले दिन ग्रहण कर सकते हैं। तो आज की जो एकादशी है आज से भगवान 4 दिन के लिए सो जाते हैं और इसीलिए भौतिक संसार के लोग कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते, जैसे विवाह आदि करना। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पूर्णमासी से पूर्णमासी चतुर्मास माना जाता है, परंतु कई भक्त गौड़ीय संप्रदाय में भी एकादशी से शुरू करके एकादशी तक रखते हैं। इन 4 महीनों में 4 चीजों का त्याग करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, बदम पुराण में लिखा है, श्रवणावर्जय चाशाकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम अश्वनीयुज त्याज्यम कार्तिके द्विदलम त्यजेत। ये राजा मानदाता का समय था, राजा मानदाता उनके यहां बारिश नहीं हो रही थी, तो राजा मानदाता अंगिरा ऋषि के पास गए और जाकर के पूछा हमारे राज्य में बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ा है, तो प्रभु कुछ ऐसा वर्णन करें, ऐसा कुछ बताएं कि हमारे राज्य में बारिश हो वरना सब सूखे से मर जाएंगे। एक किसान के लिए अन्न बहुत जरूरी है, और किसान के लिए क्या, किसान के लिए उगाना जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। अगर किसान उगाएगा नहीं तो हम खाएंगे कैसे? इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे सब लोग अपने बच्चों को खाली डॉक्टर इंजीनियर मत बनाओ, कुछ लोग अपने भक्तों बच्चों को किसान बनाने की ट्रेनिंग। किसान बनने से क्या होगा? अन्न उगाएंगे। वरना अगर सभी लोग अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे और माता पिता को भूख लगेगी तो क्या बोलेंगे? बच्चा बोलेगा पापा 24 GB की पेन ड्राइव खा लो, यही है मेरे पास, मैंने यही बनाया है। या डॉक्टर होगा तो बोलेगा कि मम्मा आप ना ये खा लो, क्या दवाइयां खा लो, सिरिंज खा लो, ग्लूकोज का पानी पी लो, बस यही है मेरे पास, सलाइन वाटर। तो इसलिए बच्चों को पता ही नहीं होगा। अब आज हम लोगों ने भी भौतिक पढ़ाई करी है, अगर आज हम कभी कभी अपने गांव जाते हैं खेतों में जाते हैं तो यही अंतर नहीं पता होता सरसों का खेत कौन सा है और गेहूं का खेत कौन सा है और चावल का खेत कौन सा है कि? तो हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि जो खेत थे उस पर हमने मॉल बना दिए और मॉल बना के माहौल बिगाड़ दिया संसार का, है कि? मॉल में आइसक्रीम तो मिलती है पर रोटी कहाँ मिलती है? रोटी मिलती है कहीं? रोटी नहीं मिलती, रोटी आज भी खेत से ही आती है। कितना भी धन हो लेकिन रोटी कहाँ से आएगी? अन्न से आएगी, और अन्न उगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हम में से जितने लोग बैठे हैं कौन है जो कि खेत में जाके अन्न उगाने के लिए तैयार है या हो करता है ऐसा? सबको दूध चाहिए, कितने लोग गाय पालन करना चाहते हैं? भैंस का दूध तो वैसे ही मना किया गया पीना। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब राक्षस भगवान से बहुत बहस करते थे, भगवान से बहस करते थे ना, जैसे समुद्र मंथन की लीला में बहस हो रही है, अमृत हम लेंगे हम लेंगे, बहस। जब बहस होती थी तो उन राक्षसों को उन जब भगवान की बात वो मान जाते थे, कभी कभी मान जाते थे, समुद्र मंथन में मान गए तो भगवान उनको भी कुछ उपहार इनाम गिफ्ट देते, तो उन लोगों को भैंस गिफ्ट दी जाती थी, ऐसे महाभारत में वर्णन, उनको बफेलो भैंस गिफ्ट दी जाती थी और देवताओं को गाय गिफ्ट दी जाती, सुरभि गाय, देवताओं को गाय, कामधेनु गाय, गाय गिफ्ट। तो भगवान का नाम भी क्या है, गोपाल, गायों को पालने वाले। भगवान का नाम भैंस पाल नहीं है, और हम भगवान को अगर भैंस का दूध देंगे तो पियेंगे, कहेंगे अरे मैं गोपाल, मेरा नाम जहां मैं रहता हूं गौलोक गायों का लोक, भैंस लोक नाम है। बोले प्रभु कहां की तैयारी, बोले भैंस लोक वृंदावन धाम। लेकिन बहुत लोग बहस करते क्या फर्क है, दोनों तो माँ है। हाँ माँ है, एक काली माँ है एक गोरी माँ है। तो भगवान ने गाय को बड़ा प्रिय बताया, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं। गाय का जो गोबर है उसे गांवों में घरों को मंदिरों को लीप करके पूजा में, आज भी आप लोगों का दीक्षा कार्यक्रम होता है, बोला जाता गाय का गोबर मिट्टी ले आओ उससे यज्ञ कुंड बनेगा, भैंस का गोबर लगा दोगे ना वो दीक्षा वाले ही सब गड़बड़ हो जाएगा। गाय का गोबर उठाते देखा है, भैंस का गोबर कभी पूजा में आते देखा? तो इसीलिए भैंस का दूध कोशिश करके हमें नहीं भगवान को भोग लगाना चाहिए ना ही पीना चाहिए। भैंस का वो एक अलग सब्जेक्ट है, एक बार मैं क्लास दे रहा था गौशाला में, 2-3 घंटे तक गाय पे बोलता रहा। तो गाय बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, किसी दिन हम गाय, कोई आएगा भागवत में प्रसंग तो गाय पे चर्चा करें, बहुत कुछ है। आपकी पूरी भक्ति गाय पर निर्भर करती है। भगवान को पूजा करनी होती तो किसकी पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते है कि नहीं? जब भगवान 5 वर्ष के पोगंड लीला से अपनी कौंवर लीला में जाते हैं तो भगवान बछड़ा छोड़कर गाय की पूजा करते हैं, जिसे आप गोपाष्टमी के नाम से जानते हो। भगवान भी जिसकी पूजा करते हैं, भगवान की भी भगवान जो है वो गाय है, लेकिन हम गाय की पूजा नहीं करते, ना उसकी सेवा करते, ना उनके लिए कुछ है। हम लोगों के घर में 2-2 गाड़ी है, हमारे भी ऐसे ही है घर में, लेकिन तैयारी नहीं है परिवार गाय रखने के लिए। प्रभु जी के घर में है गाय, इलाहाबाद में है ना प्रभु जी गाय घर, कुछ लोग हैं गाय की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा मिलती है। कहते हैं गाय की सेवा करने से कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, व्यक्ति के अंदर स्वतः भक्ति प्राप्त हो जाएगी, बहुत विनम्र बना देती है गाय सेवा करने से। 33 करोड़ देवी देवता आशीर्वाद देते हैं, स्वयं लक्ष्मी जी उसके गोबर में वास करते हैं, बहुत ही सुंदर है वो। तो इसीलिए उनके यहाँ जब मानदाता ऋषि ने कहा हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा यज्ञ करो, गाय के गोबर से यज्ञ कुंड बनाओ और यहां पर यज्ञ किया गया। यज्ञ में हरिनाम किया गया, हरिनाम के साथ साथ मानदाता को अंगिरा ऋषि ने कहा एकादशी का व्रत करो। कौन सी एकादशी? शयन एकादशी। ये एकादशी पाप नाशनी है, सारे पापों को नाश कर सकती है, वैसे भी पाप नाशनी है, अन्न ना खाएं, लेकिन स्पेशल कृपा है शयन एकादशी से। ये चतुर्मास, इन 4 महीने में हमारे गौड़ीय वैष्णव बहुत ही कंडेंस जिसे कहते भजन करते थे, डीप भजन, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, लेकिन प्रभुपाद ने कहा हमारा मूवमेंट है प्रीचिंग मूवमेंट, इसलिए हम दाढ़ियां नहीं बढ़ा सकते, बाल नहीं बढ़ा सकते, वरना बहुत नियम है। पत्ते पर खाना, पलाश के फूल का जो पत्ता होता है उस पर खाना, केले के पत्ते पे खाना 4 महीने तक, कोई स्टील नहीं कुछ नहीं खाना, सिर पर तेल नहीं लगाना, जमीन पर सोना, भगवान के नाम का अधिक जप करना, भागवतम पढ़ना, ब्रह्मचारी नियमों का पालन करना, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी का मतलब व्यभिचारी नहीं, ब्रह्मचारी का मतलब जो पर स्त्री का चिंतन भी ना करता हो। ये नहीं ऐड तो बड़े मजे से देखता है वीडियो, लेकिन बोलता है मैं ब्रह्मचारी, दूर रहता हूं, चिंतन में भी जो ना आए वो सही वायने में ब्रह्मचारी है। ग्रस्त नहीं कि ग्रस्त के लिए लाइसेंस है, उसके लिए भी चिंतन मात्र से रुकना चाहिए। आज हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस शयन एकादशी की कृपा प्राप्त करें और आज के दिन हमारे सब पापों का नाश। जैसे अंगिरा ऋषि के कहने पर मानदाता ऋषि ने हरिनाम यज्ञ किया, शयन एकादशी का पालन किया और ये व्रत लिया कि मैं चतुर्मास का पालन करूंगा, 4 महीने में 4 चीजें नहीं खाऊंगा,
कौन सी? श्रावण वर्जीय चा छाकम। इस सावन मास में आज से शुरू करके पूरे अगली एक महीने बाद तक पालक का भोजन नहीं करना, हरे पत्ते वाली सब्जियां, उसमें कीड़ा होता है। लॉजिक भी देखे, साइंटिफिकली कीड़ा होता है, कीड़ा खाएंगे तो भजन नहीं बन पाएगा। इसलिए शाक, जबकि महाप्रभु को बड़ी प्रिय है, लेकिन वो हमें इस एक महीने के लिए त्यागना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का नियम दिया हुआ। दधि भाद्रपदे तथा, उसके अगले महीने में दही नहीं खाना चाहिए। दुग्धम अश्विनी त्याजम, दूध जो है उसको अश्विन मास में पूरा महीना दूध नहीं पीना चाहिए, चाहे कितना क्षीणहीन हो जाए व्यक्ति। कार्तिक के द्वि दलम त्याजे, दो टुकड़े वाली दालें हमें कार्तिक के महीने में नहीं खानी चाहिए। ऐसा राजा के कहने पर क्या हुआ? बारिश हुई, बहुत जोर से बारिश हुई, और राजा मानधाता ने ऐलान किया कि सभी लोग चतुर्मास व्रत का पालन करेंगे, क्योंकि अंगिरा ऋषि के कहने पर हमारे इस राज्य में हरिनाम यज्ञ से बारिश हुई है। तो इन महीने में, चार महीनों में, उपदेशामृत का एक श्लोक है, दूसरा श्लोक याद है किसी को क्या है? अत्याहार प्रयास प्रजल्पा चा नियम ग्रह जन संघा लौल्यम चा षड्भिर् भक्ति विनश्यति। तो छोड़ना है ये चार चीजें तो बाहरी रूप से हैं, लेकिन ये छह चीजें अंदरूनी रूप से छोड़नी। अत्याहार, ज्यादा नहीं खाना। भक्ति सिद्धांत महाराज का मैंने आपको बताया, आप पढ़ सकते हैं भागवतम में, वाणी कोटेशंस में लिखा हुआ है। भक्ति सिद्धांत महाराज किसी भी मोटे आदमी को देखते थे बड़े नाराज होते थे, कर अत्याहार, अधिक आहार खाते हो, मेरे को देखेंगे तो नाराज होंगे, मैं मोटा हो गया। प्रयासस्सा, अधिक प्रयास करना अपने को सुखी बनाने का, सुखी बनाने का अधिक प्रयास, ओवर एंडरेंस, ये भी नाराज होते हैं। प्रजल्पा, प्रजल्पा का मतलब कृष्ण कथा को छोड़कर के बाकी सब चर्चा करना, ये इस चार महीने में त्यागना की कोशिश करें। नियम आग्रह, अपने नियमों को बड़ी दृढ़ता से पालन करें। तो दो चीजें बताई गई हैं नियम आग्रह में, एक होता है नियम आग्रह, एक होता है नियम आग्रह। नियम आग्रह क्या होता है? हाँ, पालन नहीं करना। और नियम आग्रह, ज्यादा पालन करना, मतलब अगर 16 की जगह 32 किया तो नियम आग्रह, ज्यादा पालन कर रहे हैं। मैं तो भक्ति के नियम की बात कर रहा हूं, मंगला आरती, जपा, भागवत पढ़ना, इसको कैसे नियम आग्रह से समझेंगे? सेवा करने में अगर भागवत छूट जाए या भागवत पढ़ने में सेवा छूट जाए तो साधना नहीं करना चाहिए। मतलब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं पहले स्वास्थ्य एस, फिर साधना दूसरा एस, तीसरा एस सेवा। सेवा सबसे आखिरी है, साधना पहले। ये नहीं कि मेरी माला नहीं हुई है मैं सेवा कर रहा हूँ, बोले क्या करे प्रभु जी, सेवा छूट जाती, अपराध। साधना का अपराध ज्यादा है। गुरु जब दीक्षा देते हैं तो पहली चीज बोलते हैं 16 माला का नियम जप करूंगा, भागवत पढ़ूंगा, उसके बाद चार नियम का पालन करूंगा, फिर सेवा करूंगा। सेवा बनेगी नहीं ना। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा 3 S ऑफ भक्ति, पहला स्वास्थ्य, साधना, सेवा। लेकिन साधना का मतलब ये नहीं कि मैं रात को 12 बजे साधना समाप्त होगी तो सेवा कब करूंगा। अर्ली मॉर्निंग में साधना समाप्त करें, जितना जल्दी हो, फिर सेवा भी करनी चाहिए। प्रैक्टिकल सेवा नहीं करेंगे तो ज्ञान कभी विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन नियम आग्रह का मतलब है, नियम आग्रह मतलब कि नाम जप लिया 16 माला मेरे गुरु ने, मैं 16 माला ही जप नहीं करता। एक भक्त है वो अपने बीड़ बैग में चने डाल करके घूमते हैं, बीड़ बैग लगाया चना डाल, दीक्षित भक्त। मैंने पूछा कौन से गुरु है, बताया नहीं, बोला नहीं हमारे, मैं नहीं बताऊंगा। अपने गुरु को गोपनीय रखना चाहिए, गोपनीय, छुपा करके। और फिर क्या करते हैं, ऐसे उंगली डाल करके घूमते भी है मंदिर में ना, आते हैं मंदिर में प्रसाद के लिए तो घूमते हैं, भागवतम में बाहर जपा करेंगे तो ऐसे करके रखेंगे, 2-4 मंत्र बोलेंगे, फिर जपा करते ऐसा यहां से निकाल लेते हैं एक, अच्छा ऐसे खाते हैं चने, खाते शक्ति मिलती है, फिर भागवतम में आके प्रसाद पाते हैं, जपा किया तो उसमें से दूर से देखो तो दाने दाने नजर आते हैं ना, ऐसे छुएगा कोई तो बड़े, अरे आपकी माला बड़ी भारी है तो दिखेगा दाने दाने, अंदर का धागा तो दिखता नहीं, लगेगा जपा माला। अब ये क्या कर रहा है, नियम अग्रह, नियम दिया उसका। एक भक्त ने मायापुर में, ग्रस्त भक्त, अभी हमें बता रहे थे, एक भक्त
वो मंदिर में मायापुर में ज्वाइन कर लिए, फुल टाइम सर्वेंट, गृहस्थ जीवन है। आते हैं मंदिर मायापुर में, सोचो सब कुछ छोड़कर व्यक्ति मायापुर जाता है धाम, वहां पर साइकिल चला करके मंदिर से, घर से मंदिर आते हैं और मंदिर आके पूरा दिन सेवा करते हैं और रात को फिर घर जाते हैं। तो एक भक्त है, उन्होंने पूछा कि प्रभु जी आपका साधना कब करते हैं आप, रात दिन सेवा? कहा करता हूं ना, जप करता हूं। कब? कर घर से जब चलता हूं तो जप माला ले लेता हूं साइकिल पे, जपा करता हुआ मंदिर तक आने में दो चार माला हो जाता है, और फिर वापस जब रात को जाता हूं तो दो चार माला तब हो जाता है। तो कितना हुआ? दो चार माला, दो दो मिला है तो चार हुआ, चार चार मिला तो आठ हुआ, सोलह तो फिर भी नहीं हुआ। दीक्षित भक्त है, मायापुर में रहता है, नियम अग्रह, नियम दिया गया उसका अग्रह। कई लोग मिलते हैं मेरे को, एक भक्त मिले थे, बोले प्रभु जी हम 25 माला, हमारे ही गुरु महाराज के से बोले मैं एकादशी को 25 माला नहीं कर पाता हूँ प्रभु जी, तो मैं ना उसको दो दिन में बांट देता हूँ, क्योंकि नौकरी भी है काम धंधा भी, तो 16 तो कर लेता हूँ नियम है, लेकिन ये 25 का नियम नहीं हो पाता, तो क्या करता हूँ चार चार माला अगले चार दिन में कर लेता। तो सही है, अरे एकादशी का दिन फास्टिंग फॉर द टंग फीस्टिंग फॉर द माइंड, आज मन को खूब कृष्ण भजन देना है, इसलिए 25 माला। ये थोड़ी नियम अग्रह, नियम दिया बस जैसे तैसे पूरा, अब ये नियम आग्रह बन गया कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, करने के लिए करना है। भागवत में आके बैठे चाहे भले नींद में, भागवत में बैठने से भक्त नहीं बनते, भागवत को सुनने से भक्त बनते हैं, भागवत को लिखने से भक्त बनते हैं, बिना पेन कॉपी के भक्त बैठे हुए सर, ये भक्त फुल टाइम मंदिर के भक्त। अगर आप किसी में बिना पेन कॉपी के आए हो, मैं मानता हूं आपने लिखा नहीं क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आता, मैं बेकार, लेकिन आप तो ये मान के आए हो जो बोलेगा वो बेकार बोलेगा, इसका मतलब आप तो तैयार हो कि ये भगवान की भागवत बेकार होती है। एक भी भक्त के पास में कॉपी पेन नहीं, बस एक भक्त के पास है, बहुत ही गलत बात है। अगर आप देखें ना शास्त्रीय दृष्टि से बहुत बड़ा अपराध है भगवान की कथा में जागरूक न रहना, भगवान की कथा में कॉपी पेन, अगर हम ही भक्त नहीं लेके आएंगे खाक प्रचार करेंगे, बाहर जाके बोलोगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई भी नहीं आने वाला आपके साथ में, कहेगा दुखी आदमी है रो रहा है, अरे 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 बाबा, अरे बोलोगे क्या जब लिखोगे नहीं तो बोलोगे क्या? या तो हो सकता है आप हार्ड डिस्क से सुनते हो, कोई आपका स्पेशल स्पीकर आपने उसी के नोट बनाते हो, लेकिन आपको बता देते हैं प्रभुपाद जी का नियम है भागवत कक्षा में पेन कॉपी लेके आना चाहिए, भाई छोटी कॉपी हो पेन हो, अरे एक लाइन तो ऐसी होगी जो कि आपका जीवन परिवर्तित कर दे, मतलब पूरी एक घंटे की क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हमारे लिए, प्रभु जी हम सब जानते हैं, प्रभु जी आप क्या बोलोगे हमारे, वी नो, इसीलिए तो नहीं लाए, लेके तो आना चाहिए माला, जबकि बोले थोड़ा सुन लेंगे बैठ जाएंगे, थोड़ा आंख बंद कर लेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे महाप्रसाद गोविंद। मक्खी भी बैठती है भागवत क्लास में, गाय बकरी भी बाहर घूमते हैं, लेकिन कोई परिवर्तित नहीं होता। अगर हमें परिवर्तित होना है तो हमें ध्यान से भागवत लिखना और पढ़ना और सुनना पड़ेगा। भागवत का गृह भागवत स्थान है, भागवत भक्त से भागवत ग्रहण करना पड़ेगा। बहुत कुछ है बोलने के लिए, अभी समय हो गया है, ये चार महीने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से रखिए, बहुत सारे नियम है इसमें करने के, बहुत सारी कथाएं हैं श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दी गई। प्रभुपाद जी बोलते थे नकली काम मत करो। हैदराबाद में 1976 में हैदराबाद मंदिर की ओपनिंग थी, तो प्रभुपाद जी ने देखा सभी भक्तों की दाढ़ी बड़ी हुई है, तो बोला प्रभुपाद जी ने व्हाट इज दिस, बोले प्रभुपाद आपने बताया ना चतुर्मास तो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, इसमें पढ़ा है दाढ़ी बढ़ाने वाले व्यक्ति वैकुंठ जाता है। प्रभुपाद ने कहा 24 नियम है चतुर्मास के, एक मत पालन करो, सारे पालन करो। जमीन पर खिचड़ी डाल करके जीभ से चाटना, हाथ नहीं लगा के खाना चार महीने तक, ये कर रहे खाते तो महाप्रसाद। मंदिर की ओपनिंग है, बड़े बड़े गेस्ट आएंगे, वो देखेंगे बाबा जी लोग दाढ़ी वाले, वो क्या सोचेंगे, जाइए हेड शेव करिए, क्लीन शेव होइए, प्रचार में आइए, क्योंकि हमारा मूवमेंट प्रचार का है। परंतु अंदरूनी रूप से, बाहर से आपने रखा लेकिन अंदर से तो चतुर्मास पालन करना है। अत्यहार प्रयासस्य प्रजल्पा नियमाग्रह जनसंगा लौल्यम चा षड्भिर् भक्तिर्, इन छह चीजों को कम से कम त्याग दो, चार महीने के लिए त्याग दो, चार महीने छूटेगा फिर आठ महीने फिर बारह महीने फिर जीवन भर, लेकिन अगर छोड़ना ही नहीं चाहेंगे ठीक है।
हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की।